नमस्कार भारत, 2 नवंबर शुक्रवार, मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी के प्रदेश सचिव और उनके भाई की गोली मारकर हत्या, इलाके में कर्फ्यू।
ये किश्तवाड़ के रहने वाले और बचपन से बीजेपी में, ये बीजेपी के स्टेट के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया युवा मोर्चा के सदस्य रहे हैं।
असम के तिनसुकिया जिले में बंगाली मूल के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव।
एसपी इज ऑन द जॉब एंड डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं हो रहा, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट 4 आदमी का खबर आ रही है कि कैजुअल्टी इज देयर।
जानेंगे गुरुग्राम में लोग क्यों कर रहे हैं अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क से होकर बनने वाली सड़क का विरोध। होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनेंगे विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कस्बे में गुरुवार देर रात बीजेपी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद प्रशासन ने किश्तवाड़ कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। किश्तवाड़ कस्बे में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। असम के तिनसुकिया जिले में अज्ञात हमलावरों ने बंगाली मूल के कम 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और एक शख्स घायल है। असम के मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने इस घटना की निंदा की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके कहा कि उनकी पार्टी 2 नवंबर को इस घटना के विरोध में रैलियां करेगी। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार शरणार्थी शिविरों के नियमों में बदलाव करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। ट्रंप ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब कुछ दिन बाद ही अमरीका में मध्यावधि चुनाव होने हैं। व्हाइट हाउस में एक भाषण के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवासी शरणार्थी शिविरों का गलत फायदा उठाते हैं। उन्होंने कहा कि मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर दीवार बनने के बाद प्रवासियों को वैध बंदरगाहों से ही आने की अनुमति मिलेगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा,
माइग्रेंट्स सीकिंग असाइलम विल हैव टू प्रेजेंट देमसेल्व्स लॉफुली।
प्रवासियों को वैध तरीके से ही शरणार्थी शिविरों में आने की अनुमति मिलेगी। जो हमारा कानून तोड़ेंगे और गैर कानूनी तरीके से घुसने की कोशिश करेंगे, उन्हें देश में घुसने नहीं दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें लंबे समय तक रोक कर रखेंगे। जब इन लोगों को घुसने नहीं दिया जाएगा तो धीरे धीरे वो खुद ही यहाँ आना बंद कर देंगे। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने चेताया है कि अमरीकी उद्योगों पर चीन की जासूसी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अमरीका के वैभव के लिए खतरा पैदा हो गया है और अमरीका भी इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बीच अमरीका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने चीन से निपटने के लिए एक नया तरीका निकाला है। हाल ही में अमरीका की एक कंपनी का डेटा चुराने की कोशिश के आरोप में 2 कंपनियों और 3 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। चीन इससे पहले कह चुका है कि वो बौद्धिक संपदा की चोरी रोकने के लिए अपनी तरफ से कोशिशें कर रहा है। हूथी विद्रोहियों के एक वरिष्ठ नेता ने बीबीसी से कहा है कि सऊदी अरब ने यमन के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इन अत्याचारों से ज्यादा कवरेज जमाल खाशोजी की हत्या को दी। मोहम्मद अल हूथी ने कहा कि खाशोजी की हत्या की वजह से सऊदी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है। हूथी विद्रोहियों पर भी यमन की जनता को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन अल हूथी ने इन आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा, दुनिया सऊदी का जो चेहरा आज देख रही है, यमन के लोगों के सामने वो बहुत पहले से है। यमन के लोगों को ऐसे ही मारा जाता है और फिर किसी को कुछ पता लगने नहीं दिया जाता। जिस तरह का मीडिया कवरेज जमाल खाशोजी की हत्या को मिला है, अगर वैसा ही कवरेज यमन में हो रहे अत्याचारों को लेकर भी होता तो शायद यमन की तस्वीर कुछ अलग होती। ये थे यूथी विद्रोहियों के एक बड़े नेता मोहम्मद अल यूथी के शब्द। ब्राजील के दक्षिणपंथी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा है कि वो इसराइल में मौजूद अपने देश के दूतावास को तेल अवीव से यरूशलम ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि इसराइल एक संप्रभु देश है और दूसरे देशों को उसकी राजधानी चुनने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मैं हूं आदर्श राठौर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में कल देर रात भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसा काफी लंबे समय बाद हुआ है जब जम्मू में किसी राजनेता पर इस तरह से हमला हुआ और उनकी हत्या की गई। इस घटना के बाद से किश्तवाड़ में तनाव है और कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
यह घटना जम्मू शहर से करीब 200 किलोमीटर दूर किश्तवाड़ कस्बे में कल देर रात उस समय पेश आई जब जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के स्टेट सेक्रेटरी अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार अपने घर की तरफ जा रहे थे, जिस दौरान उन पर कुछ नामालूम बंदूकधारियों ने नजदीक से गोलियां चलाई। अनिल परिहार की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनके भाई अजीत परिहार को जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां उनकी मौत हो गई। अनिल परिहार जम्मू कश्मीर बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार होते थे। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने बीबीसी को बताया।
ये किश्तवाड़ के रहने वाले और बचपन से बीजेपी में, ये बीजेपी के स्टेट के युवा मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं, ऑल इंडिया युवा मोर्चा के सदस्य रहे हैं और पीछे ये पिछली बार भी ये बीजेपी के स्टेट सेक्रेटरी थे। अभी भी रविंद्र रैना जी ने इनको स्टेट सेक्रेटरी लिया था। बड़े कद के नेता थे ये और हमारे जो 5-7-10 लोगों में बीजेपी में है उनमें इनका भी नाम था। ये हमारे उधमपुर के प्रभारी रहे, अभी ये आरएसपुरा के प्रभारी थे।
कौल ने घटना की निंदा करते हुए बताया कि ऐसी हत्या एक बुजदिलाना हरकत है।
ये तो कायराना हरकत है और क्या है।
राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अल्ताफ ठाकुर ने अपने एक बयान में बताया है कि पुलिस कातिलों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। जम्मू जोन के पुलिस आईजी एसडी सिंह जम्वाल ने बीबीसी को बताया कि अभी इस मामले में जांच जारी है कि इस हमले के पीछे आखिर कौन लोग थे। जम्मू क्षेत्र में बीते वर्षों में इस तरह की घटना पहली बार हुई है जब किसी सियासी नेता पर हमला किया गया हो। इन हत्याओं के बाद प्रशासन ने किश्तवाड़ कस्बे में धारा 144 के साथ साथ कर्फ्यू लगा दिया है और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक घटना के बाद किश्तवाड़ कस्बे में प्रदर्शनों के दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। माजिद जहांगीर, बीबीसी, श्रीनगर।
असम के तिनसुकिया जिले में कल शाम अज्ञात हमलावरों ने बंगाली मूल के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी मिली है। हमलावर कौन थे, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मैंने बात की गुवाहाटी में मौजूद हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा से और पूछा कि यह घटना कब और कहाँ हुई और अब तक इसे लेकर क्या जानकारी उपलब्ध है।
देखिए, ये घटना ऊपरी असम के तिनसुकिया जिले की है जहाँ धौला थाना अंतर्गत ये गुरुवार की शाम के करीब 7:30 की घटना है। स्थानीय पत्रकारों से बात हुई है, पुलिस से बात हुई है, ऐसी रिपोर्ट है कि कुछ लोग ढाबे पर बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, अचानक संदिग्ध हमलावर वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी और वो वहां से भाग गए। ये पुलिस के ADGP कानून व्यवस्था के मेरे मुकेश अग्रवाल से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि उनके पास जो जानकारी है उसमें 4 लोगों की मौत हो गई है।
SP इज ऑन द जॉब एंड डिटेल्स हमारे पास अभी नहीं हो रहा, उनसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बट 4 आदमी का खबर आ रही है कि कैजुअल्टी इज देयर।
जबकि स्थानीय पत्रकारों से मेरी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि 5 लोग मारे गए हैं। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा कि असम में जो नागरिकता संशोधन विधेयक का जो विरोध चल रहा है उसको लेकर पिछले कुछ दिनों से असमिया जातीय संगठन और बंगाली समुदाय के संगठनों में काफी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, आपसी विरोध हो रहा था, बंगाली और असमिया के बीच टकराव होने का एक माहौल बनता दिख रहा था और उसमें पूर्व कुछ वार्ता समर्थक अल्फाइयों ने भी बयान जारी किया था। तो जो जिन लोगों से मेरी बात हो रही है उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं उसका भी एक रिएक्शन है।
क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है
पुलिस के माध्यम से या फिर वहाँ जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, उस तरह से उल्फा पर थोड़ा सा संदेह जाता है कि ये उल्फा का इसमें हाथ हो सकता है। हालांकि उल्फा ने अभी तक किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं ली है। जो बंगाली समुदाय के जो संगठन है वो लगातार विरोध कर रहे हैं, कई संगठनों ने 2 नवम्बर को 12 घंटे का असंबंध भी बुलाया है, लेकिन अभी तक इसकी किसी भी संगठन ने पुष्टि नहीं की है। हालांकि इसके पोस्टर जरूर जारी हुए हैं, ये जो हत्या की गई है निर्दोष लोगों की।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करके असम की इस घटना को बेवकूफाना हिंसा करार दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट करके इस घटना की निंदा की है और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी आज इस घटना के विरोध में पूरे पश्चिम बंगाल में रैलियां करेंगी। असम में ही नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC में जिन 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे उन्हें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने NRC में दावे और आपत्ति दर्ज कराने की समय सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर तय कर दिया है। इसके अलावा दावों के आधार के रूप में नागरिकता प्रमाण पत्र के जो पहले 10 दस्तावेज थे जिनको आधार बनाया जाना था उनके अलावा 5 और दस्तावेज मान्य कर दिए हैं। पूरी रिपोर्ट सुनिए दिलीप कुमार शर्मा से।
असम में अपनी नागरिकता साबित करने के संकट से गुजर रहे लोगों के सामने जिन 5 दस्तावेजों को लेकर परेशानी खड़ी हो गई थी उसमें थोड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने NRC में नाम शामिल करने के दावे और आपत्तियां दाखिल करने के लिए न केवल 15 दिसंबर तक का समय निर्धारित कर दिया है बल्कि उन 5 दस्तावेजों को भी मान्य कर दिया है जिन पर कोर्ट में आपत्ति दर्ज की गई थी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने NRC समन्वयक प्रत्येक हाजेला की उस दलील को दरकिनार कर दिया जिसमें हाजेला ने नागरिकता से जुड़े 5 दस्तावेजों में जालसाजी और फोटोशॉप की चिंता जताई थी। असम सरकार समेत कई हितधारकों ने अपने हल्फनामे में सभी 15 दस्तावेजों को शामिल करने की मांग की थी। कोर्ट में हल्फनामा देने वाले ऑल असम अल्पसंख्यक छात्र संघ के अध्यक्ष अजीजुर रहमान ने BBC से कहा,
आज का डिसीजन से लोगों को टेंशन दूर हो गया क्योंकि लोगों ने अभी अच्छा तरह से इजीली वो लोग क्लेम एप्लीकेशन कर पाएगा। ये बहुत जटिल इसीलिए हम बोल रहा हूँ, जब तक आपका नाम नहीं आएगा तब तक आपका ऊपर जो इंजाम है वो इंजाम से दूर नहीं होगा।
असम में NRC का फाइनल ड्राफ्ट इस साल 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था जिसमें करीब 40 लाख लोगों के नाम छूट गए थे, लेकिन ये लोग ज्यादा परेशान उस समय हुए जब कोर्ट ने 15 दस्तावेजों में से 5 दस्तावेजों को होल्ड पर रखने का निर्देश दे दिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हाफिज रसीद अहमद चौधरी कहते हैं,
तो आप ऐसे टाइम में चेंज कर दिया है कि उसको वो नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट जब दिया है वेलकम इट, बहुत अच्छे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लोगों के बीच में जो वो था टेंशन चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा वो दूर हो गए हैं।
असम में NRC को लेकर लोगों में मतभेद हैं। जिन 40 लाख लोगों के नाम NRC में नहीं आए हैं उनमें हिंदी भाषी लोगों समेत भारी संख्या में हिंदू बंगाली मूल के लोग भी हैं, जबकि भाजपा के नेताओं पर आरोप है कि वे चुनाव वाले राज्यों में NRC के नाम पर फायदा उठाने वाले बयान दे रहे हैं। इसके जवाब में असम वित्त निगम के अध्यक्ष तथा प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार गुप्ता कहते हैं,
नहीं BJP का डबल स्टैंडर्ड नहीं है। देखिए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ अगर आप आज देखे तो आप राजस्थान की जयपुर शहर में चले जाएंगे तो वहाँ भी मिलेगा, यूपी के बनारस में चले जाएंगे, कानपुर चले जाएंगे, बेंगलोर चले जाएंगे तो वहाँ भी अवैध बांग्लादेशी लोग हैं। सवाल यह है कि अगर हम NRC की मांग दूसरे राज्यों में करते हैं तो हमारा मकसद कि भारत देश के अंदर में जो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ है उसको जो है हम चिन्हित करें, उसको बाहर कर दें।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 5 दस्तावेजों को मान्य किया है उनमें 1951 की NRC, 1966 की वोटर लिस्ट, 1971 तक की वोटर लिस्ट, शरणार्थी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, सिटीजन सर्टिफिकेट और राशन कार्ड शामिल है। ये सभी दस्तावेज 24 मार्च 1971 तक के होने होंगे। दिलीप कुमार शर्मा, BBC, गुवाहाटी।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता से जुड़े कानून को खत्म करने के लिए एक विशेष अध्यादेश लाने की बात कही है। मौजूदा कानून ये कहता है कि जो अमेरिका में पैदा हो उसे अमेरिकी नागरिक माना जाए, लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि इस कानून के चलते अवैध तरीके से अमेरिका में दाखिल होने वाले लोगों के बच्चों को जो अमेरिकी नागरिकता मिलती है वो उन्हें ना दी जाए। लेकिन क्या इस कानून को बदलना इतना आसान होगा? सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमेरिका में जब 2 दिन पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के बर्थराइट सिटीजनशिप या जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी कानून को खत्म करने की बात कही, तब से देश भर में इस मुद्दे पर नए सिरे से बहस शुरू हो गई है। अभी इस कानून के तहत जो अमरीका में पैदा हो उसे अमरीकी नागरिक माना जाता है, चाहे पैदाइश के वक्त बच्चे के माँ बाप अवैध रूप से ही अमरीका में रह रहे हों। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अप्रवासियों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हैं और अब उन्होंने इस नागरिकता के कानून को खत्म करने के लिए एक विशेष अध्यादेश लाने की बात कही है। बहुत से लोग इसे चुनावी फायदे के लिए उठाया जाने वाला कदम कह रहे हैं। 6 नवंबर को अमरीका में कांग्रेस और सेनेट की सीटों के लिए चुनाव होने हैं। बुधवार को फ्लोरिडा की एक चुनावी रैली में इस कानून के बारे में ट्रंप का कहना था,
कांग्रेस हैज नेवर पास्ड अ लॉ रिक्वायरिंग बर्थराइट सिटीजनशिप फॉर इलीगल एलियंस। इलीगल एलियंस आर नॉट सब्जेक्ट टू द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स।
राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे थे, गैर कानूनी तौर पर अमरीका में आने वाले अप्रवासियों को इस तरह नागरिकता देने के लिए अमरीकी कांग्रेस ने कभी कानून नहीं मंजूर किया। गैर कानूनी अप्रवासी अमरीका के कानून के दायरे में नहीं आते। दरअसल अमरीकी संविधान में 1868 में किए गए 14वें संशोधन के तहत उन सभी लोगों को अमरीकी नागरिक माना जाता है जो अमरीका के अंदर अमरीकी कानून के अधीन आते हों। लेकिन कानून इस बारे में साफ नहीं है कि गैर कानूनी अप्रवासियों के बच्चों की अमरीका में पैदाइश के मामले में वो बच्चे भी अमरीकी होंगे या नहीं। भारतीय मूल के टीपी पटेल अमरीका में H-1B वीजे पर काम करते हैं। उनकी एक बेटी अमरीका में ही पैदा हुई है। टीपी पटेल इस तरह कानून के बदले जाने की संभावनाओं से परेशान है। अधिकतर वकीलों का ये मानना है कि ऐसे बच्चों को भी अमरीकी नागरिक ही माना जाएगा जिनके माँ बाप ने गैर कानूनी तरीके से अमरीका में प्रवेश किया था। फ्लोरिडा में भारतीय मूल के एक अमरीकी वकील अश्विन शर्मा ऐसे कई अप्रवासियों के मामलों की भी देखरेख करते हैं। अश्विन शर्मा कहते हैं कि ये कानून सिर्फ अमरीकी कांग्रेस ही बदल सकती है।
इस कानून को बदलने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए कांग्रेस की आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये सब जानते हैं और बर्थराइट सिटीजनशिप का इश्यू सिर्फ उनके लिए बहाना है। इस मुद्दे के झंडे उठाकर अपनी पार्टी को मोटिवेट करना चाहते हैं।
लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप अगर अध्यादेश के जरिए इस कानून को बदलने की कोशिश करेंगे तो मामला अदालत में जाने की पूरी उम्मीद है। खुद राष्ट्रपति ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पॉल रायन और कुछ अन्य सांसद भी इस कानून में अध्यादेश के जरिए तब्दीली के खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के संवैधानिक मामलों में कानून में तब्दीली लाने का कांग्रेस को ही अख्तियार है। वैसे अमरीका इस मामले में अकेला नहीं है। विश्व भर में 30 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पैदा होने वाले हर शख्स को उसी देश की नागरिकता दे दी जाती है। उधर एक अन्य मामले में ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमरीका भारत को ईरान से तेल आयात करने पर अमरीकी प्रतिबंधों से छूट दे देगा। याद रहे, अमरीका ईरान से तेल आयात करने वाले देशों के खिलाफ 4 नवंबर के बाद से प्रतिबंध लगाने का ऐलान कर चुका है। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
और अब समय है अखबारों की समीक्षा का। गुरप्रीत सैनी दिल्ली से छपने वाले अखबारों के साथ स्टूडियो में मौजूद है। गुरप्रीत, क्या कहते हैं अखबार?
जी, सभी अखबारों में एक बड़ी खबर दिख रही है। जनसत्ता ने हेडिंग लगाई है, नायडू बने महागठबंधन की कवायद के सूत्रधार। NBT कहता है, महागठबंधन की गाड़ी के ड्राइवर बनेंगे नायडू। दरअसल अगले साल आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले NDA गठबंधन से मुकाबले के लिए बिखरे विपक्ष को एकजुट करने को आंध्र के CM चंद्रबाबू नायडू ने बड़ी पहल की है।
जी।
उन्होंने कल राहुल गांधी, शरद पवार, मुलायम सिंह और फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात की। इसके अलावा एक और खबर दिख रही है, जनसत्ता अगर हम देखें तो टिकट आवंटन के मुद्दे पर राहुल के सामने ही भिड़ गए दिग्विजय और सिंधिया। ये हेडलाइन लगी है जो बुधवार रात मध्य प्रदेश के दो बड़े नेता दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी के सामने ही उलझ गए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 15 साल पुराने शिवराज सिंह चौहान की सरकार को हराने की बात कर रही है, लेकिन पार्टी के बीच ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नेताओं के मतभेद सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से लंबे समय से जारी माथापच्ची के बावजूद पार्टी राज्य की एक भी सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं कर पाई है।
जी।
इसके अलावा राम मंदिर के लिए संसद में निजी विधेयक लाएंगे राकेश सिन्हा, ये खबर है कुछ अखबारों में। राज्यसभा के सांसद और संघ विचारक प्रोफेसर राकेश सिन्हा अयोध्या में राम मंदिर बनाने को लेकर संसद में निजी विधेयक लाने वाले हैं। इस बारे में उन्होंने गुरुवार को 3 ट्वीट किए। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या जमीन विवाद के मामले में सुनवाई अगले साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा है। उन्होंने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी और लालू प्रसाद यादव से पूछा है कि क्या वो निजी विधेयक का समर्थन करेंगे।
जी।
इसके अलावा दिल्ली के प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो गया है और दिवाली की वजह से ये और बढ़ सकता है, इसलिए इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अथॉरिटी ने दिल्ली NCR में 1 से 10 नवंबर तक के लिए निर्माण कार्य और खुदाई के काम पर रोक लगा दी है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। बिहार की राजधानी पटना में हाल ही में भारतीय जननाट्य संघ यानी इप्टा के 5 दिवसीय नेशनल प्लेटिनम जुबली फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस समारोह में न केवल देश भर से आए इप्टा के सदस्यों ने शिरकत की बल्कि बड़ी तादाद में इप्टा के हम ख्याल सांस्कृतिक संगठन, कलाकार, बुद्धिजीवी और फिल्मकार भी शामिल हुए। पटना से मनीष शांडिल्य अपनी इस रिपोर्ट में इस कार्यक्रम के अलग अलग रंगों से रूबरू करा रहे हैं, सुनिए।
इप्टा के 75 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित सतरंगी कार्यक्रमों से 5 दिनों में पटना शहर का अलग अलग हिस्सा गुलजार रहा। इस मौके पर सिर्फ नाटकों का मंचन और गीतों की प्रस्तुति ही नहीं हुई बल्कि सामाजिक राजनीतिक विषयों पर विमर्श से लेकर फोटो प्रदर्शनी और ऐसे ही कई दूसरे आयोजन हुए। जैसे कि फेस्टिवल के चौथे दिन एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय था जन सांस्कृतिक आंदोलन और महिलाएं। इसमें उन चुनौतियों पर खास कर चर्चा हुई जो महिलाओं को किसी आंदोलन का हिस्सा बनने से रोकती हैं। कार्यक्रम में मशहूर रंगकर्मी नादिरा बब्बर ने कहा,
जब भी मैं किसी घर में जाती हूँ, चाहे वो मिडिल क्लास हो, लोअर मिडिल क्लास हो, हमेशा ये तो महसूस होता ही है कि औरत और मर्द का फर्क वहां जाते ही आपको कमरे में दाखिल होते ही महसूस होता है। क्यों नसीब में औरतों के ही है लिखा हुआ, क्यों घर का मर्द जाके पानी नहीं लेके अंदर से आ सकता, बहुत से सवाल है।
माना जाता है कि एक संस्कृति कर्मी तभी जनता से जुड़ पाता है जब उसे पता हो कि आज देश दुनिया में क्या हो रहा है। इसके लिए वर्तमान राजनीति, साहित्य, संगीत, तकनीक जैसी चीजों की गहरी समझ जरूरी है। इप्टा के आयोजन में देश भर से आए संस्कृति कर्मियों की ऐसी दृष्टि को और पैनी करने की कोशिश भी हुई, जैसा कि इंदौर इप्टा की सारिका श्रीवास्तव ने बताया।
इस आयोजन में या जो भी आयोजन होते हैं उन सारे आयोजन में विचार सत्र जरूर होते हैं जिससे कि हम वैचारिक रूप से परिपक्व हो सके।
इप्टा ने इस आयोजन के जरिए अपने जैसे काम करने वाले संगठनों और व्यक्तियों के साथ व्यापक मंच की जमीन तैयार करने की भी पहल की है। जैसे कि देश में आज दलित विमर्श का अहम स्थान है तो इप्टा के मंच से कांचा इलैया से लेकर जिग्नेश मेवानी जैसे दलित चिंतकों और नेताओं ने अपनी बात रखी। इप्टा का गोल्डन जुबली समारोह भी पटना में मनाया गया था और अब प्लैटिनम जुबली फेस्टिवल भी इसी शहर में आयोजित हुआ। इन दोनों आयोजनों को अंजाम तक पहुंचाने में इप्टा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तनवीर अख्तर की अहम भूमिका रही। उनके मुताबिक इस बार के फेस्टिवल से इप्टा को यह सब हासिल हुआ।
बतौर संगठन इप्टा को तो एक तो उसको अपनी कार्य क्षमता का पता चला कि वो क्या कर सकता है चाहे तो, और अगर एक आवाज हम कहीं से उठाएं इप्टा के लोग तो देश भर में ये आवाज उठने की ताकत है, हमको ये विश्वास पैदा करता है।
लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मशाल को जलाई है।
फेस्टिवल के अंतिम दिन प्लैटिनम जुबली घोषणा पत्र जारी किया गया जिसमें यह अपील की गई कि झूठ, नफरत और हिंसा के खिलाफ आज़ादी, बराबरी और भारत की जन संस्कृति की हिफाजत के लिए सब मिलकर चलें। मनीष शांडिल्य, BBC पटना।
वक्त ही बताएगा इन्हें के हम कौन हैं, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, जनता ने उठाया है तो धूल भी चटाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है।
दिल्ली और इसके आसपास के इलाके इस वक्त प्रदूषण की चपेट में हैं। लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। इसी बीच गुरुग्राम के लोगों को चिंता है कि उन्हें स्वच्छ हवा दे रहा अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क अब तबाह होने की कगार पर है। दरअसल सरकार इस पार्क से होते हुए एक सड़क निकालने की योजना बना रही है लेकिन लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता गुरप्रीत सैनी की ये रिपोर्ट।
चार सौ एकड़ में फैले अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को गुरुग्राम के ग्रीन लंग्स यानी फेफड़े कहा जाता है। ये पार्क यहाँ के लोगों को साफ और तरोताजा हवा देता है। किसी जंगल से दिखने वाले इस पार्क में 400 किस्म के पेड़ पौधे और 180 से ज्यादा पशु पक्षियों की प्रजातियाँ हैं। लेकिन अब इस पार्क के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार पार्क से एक सड़क निकालने की योजना बना रही है। स्थानीय लोग सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर मोहिनी गुलरचनी उन सैकड़ों लोगों में से एक है जो रोजाना इस पार्क में आते हैं।
गुड़गांव जो कि एकदम कंक्रीट जंगल है, उसके लिए ये लाइफ लाइन है, उसके लंग्स है, और हम इसको जाने नहीं देंगे। ज़रूरत पड़ी तो चिपको जैसा मूवमेंट करेंगे। हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को इन्वोक करेंगे और हम लोग इसको बचा के रहेंगे। वी आर वेरी श्योर।
पार्क में जहां तक नजर जाती है हरियाली ही हरियाली नजर आती है। लेकिन 7 साल पहले ये तस्वीर ऐसी नहीं थी। ये जगह बंजर हुआ करती थी। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों और कुछ सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर यहाँ पेड़ लगाए और इसे हरा भरा पार्क बना दिया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे विजय धस्माना बताते हैं,
पहले ये माइनिंग साइट थी, यहाँ पे माइनिंग होती थी। तो 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया, 2009 में एमसीजी जब बनी, 2010 में उन्होंने कहा कि इसको एक हम इसको अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाने की वो करते हैं। तो हम रोड नहीं चाहते हैं पार्क के अंदर।
सरकार इस पार्क के 10 एकड़ हिस्से से हाईवे निकालना चाहती है, लेकिन पर्यावरण विदों का कहना है कि ऐसा करने से पार्क का एक तिहाई हिस्सा तबाह हो जाएगा। लेकिन प्रशासन का कहना है कि गुरुग्राम की ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए ये सड़क बहुत जरूरी है। इस प्रोजेक्ट के कोऑर्डिनेटर गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी केसी शर्मा कहते हैं,
नहीं और कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक इतनी हो गई है, इतने व्हीकल हो गए हैं, तो इनको एक रोड पे थोड़ी लाएंगे।
हालांकि विजय धस्माना इस हाईवे को गैर जरूरी बताते हैं।
यहाँ पे ऑलरेडी 3 रोडें हैं जो NH8 को और MG रोड को जोड़ती हैं, इफको चौक तक। आप उनको बढ़िया करिए, उनके कनेक्टिविटी बढ़ाइए।
आम लोगों का विरोध बढ़ता देख हरियाणा सरकार ने कहा कि वो हाईवे को पार्क के किनारे से निकालने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन पर्यावरण विदों का कहना है कि नुकसान इससे भी होगा। पर्यावरण विदों का कहना है, इस वक्त दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों का प्रदूषण से जो हाल है, ऐसे में इस तरह के हरे भरे पार्क पर भी कंक्रीट की चादर बिछाना कहाँ तक सही है। गुरप्रीत सैनी, BBC दिल्ली।
और अब सुनिए खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं इंदु पांडे। शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। भारत ने कल तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सीरीज के 5वें और आखिरी वनडे मैच में वेस्टइंडीज को 9 विकेट से मात देकर 5 मैचों की वनडे सीरीज पर 3-1 से कब्जा कर लिया। भारत ने वेस्टइंडीज को 104 रनों पर ही ढेर कर दिया और जवाब में 14.5 ओवर में 1 विकेट खोकर 105 रन बनाकर जीत हासिल कर ली। भारत की तरफ से रोहित शर्मा ने अर्धशतक लगाया। रोहित ने 56 गेंदों पे 5 चौके और 4 छक्के की मदद से नाबाद 63 रन की पारी खेली। कप्तान विराट कोहली ने 33 रन पर नाबाद रहे। इसके अलावा रोहित शर्मा ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर साझेदारी का भारतीय रिकॉर्ड बनाया। रोहित विराट के बीच वनडे में 4000 रन बन चुके हैं। रोहित ने शिखर धवन के साथ भी ये उपलब्धि हासिल की है। अगर हम गेंदबाजी की बात करें तो सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे कुलदीप यादव। उन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए।
और विदा लेने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर गुरप्रीत सैनी से।
BBC समाचार। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ कस्बे में गुरुवार देर रात बीजेपी के प्रदेश सचिव अनिल परिहार और उनके भाई अजीत परिहार की अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। असम के तिनसुकिया जिले में अज्ञात हमलावरों ने बंगाली मूल के कम 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी और 1 शख्स घायल है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी सरकार शरणार्थी शिविरों के नियमों में बदलाव करने की योजना को अंतिम रूप दे रही है। अमेरिका के अटॉर्नी जनरल जेफ सेशंस ने चेताया है कि अमेरिकी उद्योगों पर चीन की जासूसी के मामले में तेजी से बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिका के वैभव के लिए खतरा पैदा हो गया है और अमेरिका अब इसे और बर्दाश्त नहीं करेगा। हूती विद्रोहियों के एक वरिष्ठ नेता ने BBC से कहा है कि सऊदी अरब ने यमन के लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इन अत्याचारों से ज़्यादा कवरेज जमाल खाशोजी की हत्या को दी। ब्राजील के दक्षिण पंथी राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा है कि वो इसराइल में मौजूद अपने देश के दूतावास को तेल अबीब से यरूशलम ले जाएंगे। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा कि इसराइल एक संप्रभु देश है और दूसरे देशों को उसकी राजधानी चुनने के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला शाकिर आलम ने। शाम 7:30 बजे दिन भर के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आदर्श राठौर को सभी सहयोगियों के साथ इजाजत दें। नमस्कार।